3 अक्टूबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। कश्मीर में एक और चरमपंथी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवाल।
आपकी फौजें अपने बैरिक्स में हैं, अगर फौजें अपने बैरिक्स में रहेंगी काउंटर इंसर्जेंसी कैसे होगी, इंटेलिजेंस कैसे गैदर होगा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कैसे होंगे।
नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास और विशाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने दी 25 साल की सजा। और भारत न्यूजीलैंड को हरा, विश्व की नंबर एक टेस्ट टीम बना।
ये बहुत बड़ी जीत है ये इंडिया की, और दोनों मैच बहुत ही कन्विंसिंग मार्जिन से जीते हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक यंग टीम और यंग स्किपर के लिए।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत प्रशासित कश्मीर के बारामूला में हुए हमले को लेकर कहा है कि सेना के जवान ऐसी घटनाओं का जवाब दे रहे हैं। बारामूला में कल रात सेना के कैंप पर हुए चरमपंथी हमले में बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई थी। ये हमला भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के 4 दिन बाद हुआ। हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने फोन पर बात की है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव कम करने पर सहमति जताई है। रूस ने हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम को समाप्त करने से जुड़ी अमेरिका के साथ हुई संधि को निलंबित कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यह फैसला अमरीकियों की गैर दोस्ताना कार्रवाइयों के जवाब में लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ये भरोसा देने में नाकाम रहा है कि वो संधि पर कायम रहेगा। दोनों देशों के बीच ये समझौता 16 साल पहले हुआ था, जिसमें दोनों देशों को 30 टन से ज़्यादा प्लूटोनियम समाप्त करना था। जापान के जीव विज्ञानी योशी नोरी ओसुमु को मेडिसिन के नोबल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें ये पुरस्कार कोशिकाओं के डिग्रेडेशन और रिसाइकिलिंग के लिए किए गए काम पर दिया जा रहा है। नोबेल कमेटी ने कहा कि उनकी खोज से कई प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी करने में मदद मिली है। इनमें कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन और संक्रमण की प्रक्रिया शामिल है, जो पार्किंसन और तंत्रिका से जुड़ी बीमारी, मधुमेह और कैंसर की वजह बनती हैं। पुरस्कार के ऐलान के बाद ओसुमी ने कहा, एक शोधकर्ता के तौर पर इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि यीस्ट को लेकर किया गया शोध ऑटोफेगी में हुए हालिया शोधों के आगे बढ़ने के लिए बड़ी प्रेरणा बन गया। ये थे जीव विज्ञानी ओसुमी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदूज से मिली खबरों के मुताबिक तालिबान चरमपंथी सिटी सेंटर में दाखिल हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कुंदूज में जोरदार संघर्ष जारी है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया कि उसने चरमपंथियों को आगे बढ़ते देखा है। तालिबान ने रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। तालिबान ने पिछले साल कुंदूज पर कब्जा कर लिया था, बाद में सरकारी सेना ने उस पर अधिकार हासिल कर लिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मानवेल सांतोस ने राष्ट्रीय स्तर पर संवाद की जरूरत पर बल दिया है। देश में हुए जनमत संग्रह में वोटरों ने सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच हुए शांति समझौते को नकार दिया है। राष्ट्रपति और फार्क नेताओं ने कहा है कि वो शांति के लिए काम करते रहेंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर में कल रात उत्तरी जिले बारामूला में सेना के कैंप पर फिर से चरमपंथियों ने हमला कर दिया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान मारा गया। यह हमला भारतीय सेना द्वारा कंट्रोल लाइन के उस पार चरमपंथी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के दावों के 4 दिन बाद हुआ है। सिर्फ 2 सप्ताह पहले उड़ी में ऐसे ही हमले में 4 चरमपंथी और 19 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव पैदा हो गया। ताजा हमले के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन वहां रहने वाले लोग भयभीत हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
अधिकारियों का कहना है कि कल रात 10:30 बजे उत्तरी जिला बारामूला के जानबाजपोरा में स्थित 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप की 18 फीट ऊंची दीवार के बाहर चरमपंथियों ने फायरिंग की और अंदर घुसने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक सेना और निकट ही बीएसएफ कैंप के गार्ड्स ने चरमपंथियों के विरुद्ध कार्रवाई की। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने कहा कि यह ऑपरेशन 4 घंटों में समाप्त हुआ और इसमें एक बीएसएफ जवान की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बारामूला श्रीनगर राजमार्ग पर अब यातायात तो बहाल हो गया है, लेकिन बारामूला के नागरिकों को लगता है कि नियंत्रण रेखा पर 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ था वो अब किसी भी वक्त टूट सकता है।
हमें यही लगता है कि अगर सीज फायर फिर तोड़ दिया तो बॉर्डर के लोगों को ज्यादा सख्ती हो जाएगी। इससे बेहतर है कि बातचीत के जरिए मसला हल हो, जितना उतना ठीक है।
इस वाले जंग बमबारी जो है, गोलाबारी, ये हम नहीं चाहते हैं।
अगर सीज फायर टूटा तो सीज फायर से जो खतरा है वो हम बॉर्डर के लोगों पर फिर खतरा मंडराता है।
जब गोला आएगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो हिंदुस्तान का, तो हम ही लोग इसका जो शिकार होंगे। जैसे फौज ने अपने लिए बैंकर्स बनाए हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी बैंकर्स बनाने चाहिए।
बारामूला के लोगों को अब भी याद है कि संघर्ष विराम से पहले दिन रात की शेलिंग से जिले में किस तरह मौत का तांडव हो रहा था।
हम सुन रहे थे अपने बड़ों से कि जो इनका आर्टी शेलिंग का गोला आके गिरता था, जो घर में जो अफराद थे उनके बाजू, उनकी टांगे, जो मान लो कहाँ उनको पूरा बॉडी उनकी मिलती नहीं थी।
मेरा भतीजा था, एक घास काटते हुए उसको एक हल लगा था, उसकी टांग बाद में काट गई थी, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। ऐसे ऐसे वाकात हमारी आंखों से गुजरे हैं। आज के वक्त में हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा फिर दोबारा हो।
2003 से पहले यहाँ पे 2-3 गोले बड़े लगे हैं। ये पता नहीं है गोला हिंदुस्तान का यहाँ भी आ सकता है और पाकिस्तान का भी यहाँ आ सकता है। इस चीज की बहुत थरथराहट है। हम तो बहुत परेशान है, रात भर बिल्कुल इसी सोच में रहते हैं, ना हम सोते हैं ना कोई कि अभी कुछ समा हो जाएगा ऐसा।
इस बीच दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आज लोगों ने सेना और दूसरी फोर्सेस की तरफ से कथित ज्यादतियों के विरुद्ध प्रदर्शन किए।
गाँव में ऐसे उन्होंने तोड़फोड़ के हमारे बहनों के साथ उन्होंने बहुत जबरदस्ती की है। आदू के घर जला दिए, आदू को दारिया खिड़कियां सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया उन लोगों ने। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था फौज के, उन लोगों ने हमारे साथ इतनी जबरदस्ती की।
जो गाँव खाने है वो भी जला दिया था, अभी फायर सर्विस को भी आगे नहीं जाने दिया गया है।
घाटी में 3 महीने से अलगाववादी आंदोलन जारी है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 85 से अधिक लोग मारे गए और 12,000 घायल हैं। सरकार का कहना है कि 5,000 सुरक्षाकर्मी भी पथराव की घटनाओं के दौरान घायल हुए हैं। उड़ी में सैन्य ठिकाने पर 18 सितंबर को हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण आंदोलन पर मीडिया का फोकस कम हो गया है, क्योंकि लोगों को शंका है कि जंग हुई तो पहाड़ों और सेना से घिरी घाटी में वो कहां जाएंगे। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना और उसके बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने ट्वीट कर बताया कि बारामूला में हमला हुआ है लेकिन हालात काबू में हैं, और वहां पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया कि सेना के जवान ऐसी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब भारतीय सेना के पूर्व जनरल बताते हैं कि ऐसे हमलों को रोक पाना क्यों मुश्किल है। BBC संवाददाता दिव्या आर्य की खास रिपोर्ट।
पाकिस्तान से लगने वाली भारत की 3,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा का करीब 1,200 भारत प्रशासित कश्मीर, 1,000 राजस्थान, 550 पंजाब और 500 किलोमीटर गुजरात से गुजरता है। साल 2003 में करीब 900 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर बार्ब वायर यानी कंटीला तार लगाया गया, जिस पर रेडार और सेंसर लगे हैं। इसके बावजूद घुसपैठ और हमलों की चुनौती बनी हुई है। पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता के मुताबिक,
70 साल से आपकी फौजें हैं वहाँ पर इकट्ठी, इनडेफिनेट डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकती। और इनडेफिनेट डिप्लॉयमेंट से क्या होता है कि 24/7 गार्ड हम ऊपर नहीं रख सकते। जैसे ये अटैक को नाकाम कर दिया, BSF के जवाब में एक शहीद हो गया और 2 घायल हो गए और 4 जो टेररिस्ट थे वो भाग निकले। तो ये हमारी वो कभी भाग नहीं निकलना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए था, ग्रेनेड पोस्ट के अंदर नहीं आनी चाहिए थी।
2015 में गुरदासपुर और इसी साल पठानकोट में हुए हमले के बाद सीमा सुरक्षा पर अप्रैल 2016 में सरकार ने एक समिति बनाई जिसने अगस्त में अपनी रिपोर्ट दी। पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता की अध्यक्षता वाली इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब से गुजरने वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर लेजर और सेंसर लगाने के अलावा वहां निगरानी और मुस्तैद करने की भी जरूरत है। लेकिन साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सेनाध्यक्ष रहे जनरल वेद प्रकाश मलिक के मुताबिक, सैकड़ों किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा से भी घुसपैठ को पूरे तरीके से रोकना बहुत मुश्किल है।
जहां पर ज्यादा खतरा होता है वहां पर पोस्ट जो होती हैं वो नजदीक होती हैं, जहां पर कम खतरा होता है वहां पर पोस्ट दूर दूर होती हैं। फिर भी क्योंकि हमारा जो LOC है वो एक प्लेन इलाके से लेकर उसके बाद में उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है, उसके ऊपर वेजिटेशन भी बढ़ती जाती है, ऑलमोस्ट 17-18,000 फीट हाई, नदी नाले में से ऐसी कोई चीज़ में से तीन आदमी चार आदमी कर निकलना फिर भी पॉसिबल हो सकता है।
पाकिस्तान और सीमा पार चरमपंथ की ओर भारत की नीति स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट यानी संयम की रही है। 1999 में करगिल, 2001 में संसद हमला और 2008 में मुंबई हमले के वक्त भी भारत ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया। जनरल अशोक मेहता के मुताबिक इसका असर फौज के मनोबल पर पड़ता है। भारत प्रशासित कश्मीर में आंतरिक अस्थिरता का उल्लेख देते हुए वो कहते हैं कि फौज को स्थानीय लोगों का समर्थन भी हासिल नहीं है।
वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है। आपकी फौजें अपने बैरिक्स में हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि फौजों को बाहर निकाला जाए क्योंकि उससे और एग्रेवेट हो जाएगा सोल्यूशन। अगर फौजें अपने बैरिक में रहेंगी काउंटर इंसर्जेंसी कैसे होगी, इंटेलिजेंस कैसे गैदर होगा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कैसे होंगे।
जनरल वीपी मलिक का दावा है कि सैन्य बल और तकनीक के स्तर पर भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से आगे है, पर चरमपंथी गुटों को न सिर्फ पाकिस्तानी सेना का समर्थन है बल्कि असला हथियार खरीदने के लिए देश विदेश से बहुत पैसे भी मिलते हैं। ऐसे में जनरल मेहता के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक एक सही कदम है, पर अभी भारत के पास नियंत्रण रेखा के पार जाकर कार्रवाई करने की क्षमता नहीं, तो उसे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रहकर ही अपना काम करना होगा, जिससे बहुत सफलता नहीं मिल पाएगी। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
वर्ष 2002 में 16 और 17 फरवरी की रात हुई बिजनेस एग्जीक्यूटिव नीतीश कटारा की हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उसके एक सहयोगी विशाल यादव को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड के सिलसिले में एक अन्य आरोपी सुखदेव पहलवान को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था और उसे 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हत्या के मामले में निचली अदालत ने मई 2008 में विकास और विशाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सलमान रावी की रिपोर्ट।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्तों को 30 साल की सजा सुनाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने दोषियों की अपील पर 5 साल की सजा कम करते हुए उन्हें 25 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा के 5 साल कम किए जाने से बुरा जरूर लगा।
मैं इस फैसले को देखिए, क्वांटिटी अगर मानी जाए नंबर ऑफ इयर्स, तो यस हमने डेथ मांगी थी और इसमें क्वांटिटेटिवली 5 साल कम हुआ है। और यहाँ पर साक्ष्य कोई जूता चप्पल नहीं था, मेरे बेटे का शरीर था जो डिस्ट्रॉय किया गया, तो उसकी 10 साल की सजा अगर मैं कहूँ कि अलग से मिलनी चाहिए थी तो बहुत बड़ी बात नहीं है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग माना था और इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ में भी दुर्लभतम श्रेणी करार दिया था, मगर अदालत ने फांसी की सजा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को ऑनर किलिंग ही माना है, क्योंकि आरोपों के अनुसार विकास ने अपनी बहन के नीतीश कटारा से संबंध होने से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया था। नीलम कटारा का कहना था,
बट क्वालिटेटिवली मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर मर्डर, ये एक साधारण हत्या नहीं थी, ये एक वेल प्लान ऑनर किलिंग का क्राइम था बाय पावर ड्रंक रिच पीपल, और उसके इसकी सजा जो है एक नॉर्मल जो लाइफ होती है जिसमें 14 के बाद रिमिशन मिल सकता है उससे हटा के कोर्ट ने बढ़ा के इसको कहा है कि 25 से पहले विकास यादव को रिमिशन नहीं मिलेगा।
ये वारदात वर्ष 2002 की 16 फरवरी की रात की बताई जाती है, जब गाजियाबाद में एक शादी के समारोह में शामिल होने गए नीतीश का अपहरण कर लिया गया था। अभियुक्तों पर आरोप है कि वो उनकी बहन भारती के साथ नीतीश के संबंध को लेकर गुस्से में थे। 20 फरवरी को नीतीश कटारा का जला हुआ शव बुलंदशहर के खुर्जा से बरामद किया गया था। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदूज और दक्षिणी शहर हेलमंड के एक जिले पर हमला कर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने पिछले साल कुंदूज पर हमला कर कब्जा किया था, जिसे सरकार ने जल्द ही दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब एक साल बाद फिर से तालिबान ने चौतरफा हमला कर कुंदूज पर कब्जा करने की कोशिश की है। खबरों के मुताबिक वहां अब भी लड़ाई जारी है। बीबीसी संवाददाताओं के ब्यौरे के साथ तृप्ति श्रीवास्तव।
अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदुज में सोमवार आधी रात को तालिबान चरमपंथियों ने चारों ओर से हमला कर दिया। तालिबान ने हमला पूरी तैयारी और समन्वय के साथ किया। हालांकि तालिबान सरकार का कहना है कि अफगानी सेना हमलावरों को पीछे धकेल रही है। तालिबान ने सितंबर 2015 में भी कुंदुज पर हमला कर कब्जा कर लिया था। साल 2001 के बाद से कुंदुज पहला ऐसा प्रमुख प्रांत था जहां तालिबान ने अपनी सत्ता गंवाने के बाद कब्जा किया था। तब अफगानी सेना ने जल्दी ही कुंदुज को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया था। हालांकि चरमपंथियों ने चार दिन बाद ही शहर छोड़ा था, लेकिन अपनी ताकत साबित कर दी थी। कुंदुज के प्रांतीय परिषद के सदस्य अमरुद्दीन वाली का कहना है,
एक साल से ऊपर हो गया जब कुंदुज के लोग लड़ाइयों में मारे जा रहे हैं। हर रोज चरमपंथी शहर की तरफ आते हैं और अफगान सेना उन्हें बाहर खदेड़ देती है। इस लड़ाई से कुंदुज में आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और कई लोगों की मौत हुई है। लड़ाई और हाईवे के बंद होने की वजह से हजारों परिवारों को विस्थापित करना पड़ा।
अफगान सेना और तालिबानी चरमपंथियों की मुठभेड़ और गोलियों की आवाज़ के चलते कुंदुज के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर घबराए हुए हैं। कुंदुज के निवासी अकमल रहमानी का कहना है,
तालिबान हमसे महज 300 मीटर दूर हैं, उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया है, लेकिन अफगान सरकार हमसे कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है।
कुंदुज के लोगों का कहना है कि उन्हें भीषण लड़ाई और हेलीकॉप्टरों की लगातार आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक और निवासी अब्दुल्ला रहमानी का कहना है,
सुरक्षा व्यवस्था के बुरे हाल हैं, यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है।
तालिबान चरमपंथियों ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंड प्रांत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले लश्करगाह को भी अपने कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यहां हुए हमले में एक पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। इसके अलावा भी कुछ पुलिसकर्मियों की मौत की खबरें आ रही हैं। अफगान पुलिस का कहना है कि चरमपंथियों को शहर से बाहर धकेला जा रहा है, लेकिन लड़ाई अब भी जारी है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जिबुल्ला मुजाहिद का कहना है कि तालिबान ने शहर के कई चेक पॉइंटों को अपने कब्जे में ले लिया है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब राष्ट्रपति अशरफ गनी मंगलवार को ब्रसल्स में एक सम्मेलन में विश्व के बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं। वो अफगानिस्तान के लिए विश्व समुदाय से वित्तीय सहायता मांगेंगे।
तालिबान का कुंदुज शहर पर कब्जा।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं इंदु पांडे और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। मेरे साथ हैं इंदु पांडे।
नमस्कार।
और इंदु पांडे के पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं, चिट्ठियां भी हैं और इस बार ईमेल भी हैं। हमारे कुछ श्रोताओं को ये इस बात पर एतराज था कि ईमेल पिछले दो हफ्ते से हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसलिए आज शुरुआत आप इंदु जी ईमेल से ही करें तो बेहतर है।
ये पहला ईमेल है डॉक्टर सत्य कमलाकर वज्जल का, श्रीकाकुलम से, आंध्र प्रदेश। बीबीसी जैसे एक प्रतिष्ठित प्रसारण केंद्र से यदि छोटी सी भी भूल हो जाती है तो वो श्रोताओं के लिए असहनीय है। क्या ऐसा मानना गलत है? आज सुबह की सभा में खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आदेश कुमार गुप्त जी ने पीवी सिंधु को रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक का विजेता घोषित कर दिया, परंतु जहां तक श्रोताओं को याद है कि सिंधु ने रजत पदक प्राप्त किया है। आपसे विनती है कि श्रोताओं की श्रवण शक्ति को कम ना आंकें।
कमलाकर जी, बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट बात यह है कि आज सुबह आदेश कुमार गुप्त से ये गलती हुई थी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ, ये एक ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने इसका हमारा ध्यान इसकी ओर खींचा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सजग श्रोताओं की वजह से हम बहुत ही सतर्क रहते हैं और रहना भी चाहिए।
और दूसरा मेल है गुरदासपुर पंजाब से बलदेव सिंगारा, लिखते हैं कि एसडी बर्मन पर रेहान फजल की विवेचना जादुई थी। बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, मैजिक डायरेक्टर थे। ऐसी विवेचना करने के लिए रेहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार वो मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा।
बिल्कुल, रेहान साहब की तो तारीफ हमेशा होती ही रहती है।
और इसी के लिए अशोक कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, उन्होंने भी यही बात कही है कि बहुत अच्छा लगा उनको ये कार्यक्रम। और आगे लिखा है कि 1 अक्टूबर को सुशीला सिंह द्वारा प्रस्तुत इंडिया बोल भी काफी अच्छा था। सफल प्रस्तुतीकरण के लिए सुशीला सिंह को बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने कार्यक्रम सुने।
यह है कमल जोशी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके सही किया। किसी भी देश को अपनी प्रतिरक्षा का पूरा अधिकार है। भारत को पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीति के विरोध में विश्व भर में अभियान चलाना चाहिए और उस पर अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से दबाव बढ़ाना चाहिए।
जी कमल जोशी जी, आपकी राय है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म में हमारे जो श्रोता प्राथमिकता है उनकी राय भी शामिल की जाए। हालांकि सीधे किसी कार्यक्रम के बारे में आपने नहीं लिखा है,
नहीं, नहीं,
लेकिन फिर भी आप हमारे पुराने श्रोता हैं तो आपकी ये राय हमने शामिल की है।
और ये है ज्योतिर्मय एस एस दासम, गाँव खरबला, जिला हिसार, हरियाणा से। कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, क्या हम आपके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते,
यानी चिट्ठी नहीं लिख सकते? बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिर्मय जी,
आप सब परिवार जैसे लगते हैं। रही सुझाव की बात, तो राजेश जोशी जी की बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई बीबीसी हल्के मूड के लिए संडे दिन भर सुनता होगा।
हां, मैंने कहा था पिछली बार की जो फिल्मी हीरो हीरोइन का इंटरव्यू हम सुनाते हैं वो एक हल्के फुल्के मूड के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है ज्योतिर्मय जी इससे सहमत नहीं है। लेकिन उन्होंने आगे लिखा है कि कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू सुनाए जाने चाहिए
जैसे कि पुष्पेश पंत या किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता या मैग्सेसे पुरस्कार विजेता
प्रोफेसर अमर सेन वगैरह।
जी
जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम बीच बीच में सुनाते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों के इंटरव्यू नहीं प्रसारित होते हैं, लेकिन हाँ आपकी ये बात सही है कि इस पर और जोर दिया जाना चाहिए।
और ये मेल है सुरेंद्र सिंह बागी महम, जिला रोहतक, हरियाणा से।
क्या लिखते हैं?
इन्होंने लिखा है कि सप्ताह में दो दिन बुधवार और शुक्रवार का दिन भर सुनना मेरी आदत सी हो गई है, क्योंकि निखिल रंजन का दुनिया जहां और रेहान फजल की विवेचना इन्हीं दो दिनों में प्रसारित होती
जी,
है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि रेहान फजल की विवेचना हो या निखिल रंजन ने जिस तरह से दुनिया और दुनिया जहान कार्यक्रम को वो प्रस्तुत करते हैं उसकी ढेर सारी तारीफ आती है। मैं देख रहा हूँ कि एक और चिट्ठी है मंटू कुमार मोतिहारी बिहार से, वो भी शायद इसी पे कुछ कह रहे हैं।
कहते हैं कि सिंधु नदी जल विवाद पर निखिल रंजन की दुनिया जहां बहुत अलग लगी, क्योंकि बीच बीच में पानी से रिलेटेड गाने बजे और मुद्दा सबकी समझ में आया।
ये तो निखिल रंजन का अपना तरीका है कि श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दे, बांध लें, लेकिन उनकी जानकारी भी बढ़ाएं, खासतौर पर खुद की जानकारी भी बढ़ाएं, हम सबकी जानकारी बढ़ाएं।
और चाहते हैं कि मिर्जा साहिबा की अमर प्रेम कहानी को बयां किया जाए तो अच्छा लगेगा।
ये तो रेहान साहब के पास मुझे लगता है ये गुजारिश भेज दी जानी चाहिए।
अभिषेक गौरव, गांव घघरी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से। लिखते हैं कि बीबीसी संचालकों, खास करके आपकी चिट्ठियां के प्रस्तुतकर्ता से मुझे ये कहना है कि उड़ी हमले के बाद भारत पाकिस्तान का रिश्ता बिगड़ गया, पर इसमें ईमेल वाले श्रोता की क्या गलती थी?
नहीं नहीं, ईमेल वाले श्रोताओं की कोई गलती नहीं, इन्हीं की शिकायत है कि पिछले दो हफ्तों से हमने ईमेल शामिल नहीं किए हैं। तो अब आपकी ये शिकायत दूर हो गई होगी। अभिषेक जी, आप लिखते रहिए, ईमेल से लिखें या पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय लिफाफा भेजें। अगर आप चिट्ठियां भी ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा श्रोताओं का एक तबका बहुत नाराज हो जाएगा।
चिट्ठी है अभय कुमार निराला, बगेन, बक्सर, बिहार से।
क्या लिखते हैं निराला साहब?
निराला साहब ने काफी निराली चीज लिखी है
जी।
सौ मूस खा के बिल्लैया भइल भक्तिन।
भक्तिन, अच्छा, सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये भी कहते हैं।
सूबे में संगीन अपराध के कई चर्चित मामले के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद बाहुबली सिवान बिहार के शेरभर, या आप यूं कहें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पर सिवान बिहार से जो 20-22 सितंबर को श्री सलमान रावी ने चारों तरफ से अध्ययन करके
इंटरव्यू किया था उसकी ये तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, सलमान रावी गए थे सिवान और वहाँ जो माहौल है, जिस तरह का लोगों में डर है या कुछ लोगों, बहुत सारे लोग समर्थक भी हैं, तो उन सब पर रिपोर्ट की थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह चिट्ठियाँ लिखते रहें, इसी तरह ईमेल भी लिखते रहें। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपको पता बताना चाहूँगा, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता आपको मालूम ही है, hindi.letters@bbc.co.uk। तो इजाज़त लें।
ज़रूर, नमस्कार।
भारत ने कोलकाता में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में आज न्यूजीलैंड को 178 रन से करारी मात दी। जीत के लिए 376 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 197 रन ही बना सकी। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
आज मोहम्मद शमी की शॉर्ट पिच गेंद को जैसे ही न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने उड़ाने की कोशिश की, वैसे ही गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद स्लिप में खड़े फील्डर्स के ऊपर लहरा गई। स्लिप में खड़े मुरली विजय थोड़ा पीछे गए, गेंद के नीचे आए और उनके सुरक्षित हाथों ने कैच को थाम लिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट गिरा और भारत ने कोलकाता में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को चौथे ही दिन 178 रनों से जीत लिया। इतना ही नहीं, भारत ने तीन टेस्ट टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली और ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान भी हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 376 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी का पुलिंदा महज 197 रन पर बंद गया। हालांकि एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट खोकर 104 रन था, लेकिन सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम के आउट होते ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आया राम गया राम साबित हुए। लैथम 74 रन बनाकर आर अश्विन की गेंद पर विकेटकीपर साह के हाथों लपके गए। उनके जोड़ीदार मार्टिन गप्टिल ने 24 और हेनरी निकोल्स ने भी 24 रन बनाए। इसके बाद लियो क्रोंकी ने 32 और मैट हेनरी ने 18 रन बनाकर थोड़ा बहुत संघर्ष किया। भारत के मोहम्मद शमी ने 46 रन देकर 3, आर अश्विन ने 82 रन देकर 3 और रविंद्र जडेजा ने भी 41 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले कल के स्कोर 8 विकेट पर 227 रन से आगे खेलते हुए भारत की दूसरी पारी आज 263 रन पर समाप्त हुई। 39 रन बनाकर कल नाबाद रहे रिद्धिमान साहा आज भी 58 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि भुवनेश्वर कुमार 23 और मोहम्मद शमी 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने 38 रन देकर 3, मैट हेनरी ने 59 रन देकर 3 और मिचेल सेंटनर ने भी 60 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। रिद्धिमान साहा को दोनों पारियों में नाबाद अर्धशतक बनाने का इनाम मैन ऑफ द मैच के रूप में मिला। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 8 तारीख से इंदौर में खेला जाएगा।
कोलकाता टेस्ट जीतने के साथ ही भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। आज मैच समाप्त होने के बाद आदेश कुमार गुप्त ने भारत के कप्तान विराट कोहली के कोच द्रोणाचार्य अवार्डी राजकुमार शर्मा से बात की।
डेफिनेटली बहुत बड़ी जीत है ये इंडिया की और दोनों मैच बहुत ही कन्विंसिंग मार्जिन से जीते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 का ताज मिल गया है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक यंग टीम और यंग स्किपर के लिए।
स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बल्कि भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाजों ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है।
गेंदबाजी मैं कहूंगा चारों ही गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, भले ही वो अश्विन या जडेजा की फिरकी को देख लें या फास्ट बॉलिंग भोवी और शमी की। भोवी ने जिस तरह गेंदबाजी की पहली इनिंग में और शमी ने रिवर्स किया बाद में, तो सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा है। खिलाड़ी अपना अपना रोल प्ले करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है टीम के लिए।
और रिद्धिमान साहा जिन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, दोनों पारियों में उन्होंने अर्धशतक जमाया।
दोनों इनिंग में अंडर प्रेशर जिस तरह साहा ने प्रेशर एब्जॉर्ब किया और जिस तरह की पारी खेली है और बड़ी नीट बल्लेबाजी की है उन्होंने, कभी भी ये नहीं लगा कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है उनको बल्लेबाजी में भी, कीपिंग अच्छी कर ही रहे थे वो शुरू से, तो एक बहुत बड़ी एसेट हो गई है इंडियन टीम के लिए कि अगर आपका नंबर 6 बल्लेबाज या नंबर 7 बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी करे तो बहुत डेप्थ आ जाती है बल्लेबाजी में, जो कि साहा की बल्लेबाजी से आने लगी है।
और जब न्यूजीलैंड का स्कोर दूसरी पारी में 100 से ऊपर हो गया था और केवल एक खिलाड़ी आउट था, तब क्या आपको लगता था कि न्यूजीलैंड कुछ अच्छा खेल दिखाएगी?
नहीं देखिए, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। एक तो अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन नहीं खेल रहे थे, अगर वो इस स्कोर पे बल्लेबाजी करने आते तो जरूर खतरा बन सकते थे इंडियन टीम के लिए, लेकिन विलियमसन का ना होना एक बहुत बड़ी क्षति थी न्यूजीलैंड के लिए। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि इतनी एक्सपीरियंस बल्लेबाजी नहीं है न्यूजीलैंड की कि वो हमारे धारदार गेंदबाजी का सामना कर पाए।
शिखर धवन को मौका मिला था लेकिन वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए दूसरी पारी में, हालांकि थोड़ा सा जमते लगे तो।
देखिए विकेट थोड़ा सा मैं कहूंगा कंड्यूसिव नहीं था बल्लेबाजी के लिए, और जिस तरह से नया बॉल फ्लाई कर रहा था, काफी कोशिश की उन्होंने वहां पर रुकने की, 2 बार उनके अंगूठे पर भी बॉल लगी, काफी अनइवन सा बाउंस होकर लगी वो, फिर भी उन्होंने कोशिश की वहां डटे रहने की जबकि विकेट इतना डिफिकल्ट था, तो थोड़ा सा प्रेशर भी था शिखर धवन के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि वो रन नहीं बना पाए।
राजकुमार शर्मा से बात कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और सभा की समाप्ति से पहले विश्व समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत प्रशासित कश्मीर के बारामूला में हुए हमले को लेकर कहा है कि सेना के जवान ऐसी घटनाओं का जवाब दे रहे हैं। बारामूला में कल रात सेना के कैंप पर हुए चरमपंथी हमले में BSF के एक जवान की मौत हो गई थी। रूस ने हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम को समाप्त करने से जुड़ी अमेरिका के साथ हुई संधि को निलंबित कर दिया है। जापान के जीव विज्ञानी योशिनोरी ओसुमी को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदूज से मिली खबरों के मुताबिक तालिबान चरमपंथी सिटी सेंटर में दाखिल हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कुंदूज में जोरदार संघर्ष जारी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।